हम जो राम कथा कल चर्चा कर रहे थे उसके हमने कल सीता के अपहरण के बारे में चर्चा की, तो उसको हम आगे बरकरार रखेंगे अभी। तो जैसे मैं बताया था रुद्रादिपतिदायक राम, जो प्रभु श्री रामचंद्र जो है वे जब दंडकारण्य में आए थे तो जब प्रवेश किया था तो जटायु ने कहा था कि मैं आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, कुछ जरूरत पड़ेगी तो। इसीलिए जहाँ पे लक्ष्मण राम और सीता रह रहे थे उस कुटिया के पास में ही, तो उस कुटिया के पास में ही जटायु भी थे। और जब सीता को रावण खींच के ले जा रहा था तो तभी सीता चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ऋषि रामचंद्र को पुकार रही थी, पर वो राम जो भी काफी दूर थे। तो तभी जब वो खींच के लेके जा रही थी, पहले सीता उनके रावण के पकड़ से छूट के एक पेड़ को जाके उन्हें पकड़ लिया, पर रावण ने अपनी शक्ति से उसको खींच लिया और फिर अपने रथ पे चढ़ गए। यहाँ पे वो पुष्पक विमान में नहीं आए थे, अपने रथ में आए थे। और जब वो जा रहे थे तभी पास में रावण जा रहा था तभी पास में ही एक पेड़ में जटायु विश्राम कर रहे थे। और जब जटायु ने देखा कि सीता जा रही है, सीता को खींच के लेके जा रहा है, अपहरण हो रहा है, तो जटायु रावण को वह जानता था पहले से, क्योंकि जटायु और संपत्ति ये दोनों भाई थे। संपत्ति की कहानी सुंदरकांड में आती है, जो सागर के तट पर जब वानर पहुंचते हैं तभी संपत्ति जो जटायु का बड़ा भाई होता है वो बताता है कि सीता इस सागर के परे हैं। तो संपत्ति और जटायु ये दोनों सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। वो इतने शक्तिशाली पंछी थे कि वे न केवल पृथ्वी का भ्रमण करते थे पर आसमान में उड़ के वे दूसरे ग्रहों के पास भी जा सकते थे। तो इसलिए उनको कौन से जगह में कौन रहता है, क्या करता है, उसके वहां राजा है, वो सब पता था। तो इसीलिए जटायु ने जब से ही देखा तो पहचान लिया कि रावण है। और जटायु जो है वह केवल कोई साधारण गिदड़ नहीं है, गिदड़ों में राजा के समान है वह। और यह जो वह पहले रामायण में ऐसे बताया गया है कि हम देखते हैं वहां पे वानर है, गिदड़ है, भालू है, और ये सब जो है वह मानवों जैसे ही बोलते हैं, मानवों जैसे ही भावनाएं हैं उनकी। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे संभव है, कोई लोग कह सकते हैं ये सब काल्पनिक है, पर वास्तव में वहां पर बताया गया है शास्त्रों में कि जो मानव ये केवल एक शारीरिक आवरण नहीं है, ये एक चेतना का स्तर है, चेतना का स्तर है वो। तो इसीलिए कोई कोई मानव भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल पशु की चेतना में हो सकते हैं। और जैसे कि जड़ भरत हम देखते हैं, वह जब जड़ भरत भागवत हम के पांचवें स्कंध में कहानी आती है कि वे जब एक हिरण से आसक्त हो जाते हैं तो वो हिरण बन जाते हैं, पर वो हिरण में मानव जिस चेतना होती है वो समझते हैं कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो रामायण में वानर बताए गए हैं वह वानर इस दुनिया के साधारण वानर के समान नहीं है। वो वानर जो है वानर की योनियों में भी श्रेणियां होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते होते हैं, कुत्ते के में भी श्रेणियां होती है, न केवल शारीरिक स्तर पर श्रेणियां होती है, छोटे कुत्ते होते हैं, कोई बड़े कुत्ते होते हैं, कोई पालतू कुत्ते होते हैं, कोई रास्ते पर रहने वाले कुत्ते होते हैं। पर अगर किसी को पुलिस को किसी चोर को ढूंढना है और उसको सूंघना है तो कोई रास्ते का कुत्ता नहीं ले सकते वो, तो उसके लिए विशेष प्रकार के कुत्ते लगते हैं। तो यहाँ पे कहने का भाव यह है कि कुत्तों में भी चेतना का अलग अलग स्तर होता है। तो वैसे ही जो वानर है ये वानरों में भी चेतना का अलग अलग स्तर है। और यह जो वानर थे वह साधारण बंदर नहीं थे, वे बहुत ही शक्तिशाली थे और उनकी चेतना जो थी वो मानवों के समान ही चेतना थी। और उसके कारण ये जो न केवल मानव जैसे बोलते थे वो, पर मानव जैसे विचारधारा भी थी और समझ भी थी उनकी। तो अभी वैज्ञानिक लोग संशोधन करते हैं तो जानते हैं कि जानवरों में संवाद करने की शक्ति होती है। ये संवाद किस तरह से करते हैं, पंछी जब ची 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 करते हैं तो उसमें उनकी भाषा नहीं होती है, पर वो किस प्रकार से ची ची करते हैं उससे कुछ देर प्रकार का संवादन हो जाता है, संवाद हो जाता है उसमें। पर जितनी चेतना प्रगतिशील है, जितनी बुद्धि विकसित है, जितनी मानवता के स्तर के आप करीब आ रहे हो, तो उतना वो मानवीय और आध्यात्मिक चीज समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जटायु हम देखते हैं या जांबवन देखते हैं जो कि भालू है, या फिर सुग्रीव हनुमान ये देखते हैं, ये वानर है, पर इन सब में मानव जैसे ही चेतना है और मानव जैसे ही वो बोलते हैं। और इस प्रकार के जो जानवर है वह अभी हमें कलयुग में दिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग, हर एक युग जो है एक वातावरण के समान है, और अलग अलग वातावरण में जैसे हम अलग अलग शरीर पहनते हैं, शरीर नहीं सॉरी कपड़े पहनते हैं, अगर ठंडी का वातावरण होगा तो हम स्वेटर पहनते हैं, तो दुकानों में भी बहुत से स्वेटर दिखेंगे आपको, पर गर्मी होगी ज्यादा स्वेटर दिखेगा नहीं। तो जो युग है ये वातावरण के समान है, मौसम के मौसम के समान है ये। और कुछ कुछ युगों में कुछ कुछ योनियां प्रकट होती है, कुछ कुछ युगों में कुछ कुछ योनियां प्रकट नहीं होती है। तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कुछ कुछ योनियां जो है अभी लुप्त हो गई है, जैसे वो कहते हैं डायनासोर नाम का एक विशाल जानवर हुआ करता था और उस पर कई चित्रपट भी बन गए हैं कि कैसे बड़े बड़े जानवर है। तो फिर वो जो प्रभुपाद जी को पूछा गया क्या डायनासोर वास्तव में था, तो प्रभुपाद जी बोले कि कोई उसको डायनासोर को बाइनासोर को कृष्ण लीला में अघासोर है, तो वो भी एक लंबा जानवर है, लंबा सांप है वो। तो वास्तव में ये एक तरह से शास्त्रों में कुछ बताया है तो कहते हैं उसको काल्पनिक है, पर फिर लोग खुद अपनी कल्पना बना लेते हैं और कहते हैं ये पहले था अभी नहीं है, पर भूतकाल में था ऐसे। तो क्या है, ये सृष्टि में इतनी विविधता है कि हम हमारे अगर हम हमारे इतिहास को देखते हैं, वैज्ञानिक इतिहास को, तो जो समझ है बहुत कम समय के लिए है। जो इतिहास है वो 2-3 हजार साल तक कुछ अस्पष्ट है, उसके पहले क्या हुआ था बहुत अस्पष्ट है। और वैसे ही हम भूगोल को देखते हैं तो या ब्रह्मांड को देखते हैं तो पृथ्वी ही हम थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, पर इतने सारे ग्रह है और वहां पे क्या क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो सारे बुद्धिमान जानवर जो यहाँ पे दिखते हैं हमको इस लीला में, यह सब वास्तव में श्रेणियां योनियां हैं, जो योनियों के अलग अलग श्रेणियों के अनुसार उनका अस्तित्व है, भले ही हमें अभी यह न दिखते हो। तो जो जटायु है वह भी धर्म को जानता है, और इसीलिए पहले जब वो रावण को इस तरह से बड़ा ही घृणास्पद कार्य कर रहा है कि श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी सीता का उसका अपहरण कर रहा है, तो पहले वो उसको सदउपदेश देके रोकने का प्रयास करता है, और वो कहता है कि तुम तो एक राजा हो, तुम राक्षसों के राजा हो, और इस तरह से घृणास्पद कार्य कैसे कर रहे हो तुम, किसी और के पत्नी का अपहरण करना वह बिल्कुल अनैतिक है, और ये रावण कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, और ये सब संवाद ऐसे नहीं है कि दोनों अपने आसन पर बैठ के संवाद कर रहे हैं। रावण जो है अपने रथ से जा रहा है और उसके बाजू में जटायु जो है उड़ रहा है और उड़ते हुए उसको बोल रहा है, तो रावण कुछ ध्यान भी नहीं देता है उसके। तो फिर जटायु कहने लगता है कि वास्तव में, अब जटायु जब देखता है कोई हम बात कर रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है तो क्रोध आता है, तो फिर हम क्या करते हैं जोर से कुछ बोलते हैं, तो जोर से कैसे पहले हम सीधे सीधे बात करते हैं, सुनता नहीं तो फिर जोर से बोलते हैं सुनता नहीं तो फिर कुछ हाथ पैर पे आ जाता है बात। तो वैसे ही ये पहले वो चिल्लाने लगता है, वो चिल्लाने लगता है जटायु, कहता है कि तुम तो एक कायर हो, तुम जैसे कोई यज्ञ स्थली में कोई जो यज्ञ में अर्पण करने के लिए जो अन्न सामग्री है, वह जब वो यज्ञ का ब्राह्मण नहीं है तो कुत्ता आके वो लेके जाता है। उसी तरह से जब प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है तो हम एक कायर के समान सीता को ले जा रहे हो, और अभी एक क्षत्रिय के लिए कि किसको कायर कहना यह बड़ा अपमान है। पर यहाँ पे रावण सीता के काम वास्तव में उत्पन्न उन्मत्त हो गया था कि उसके कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, और जब इस तरह से रावण जटायु देखा कि सुन नहीं रहा है वो, तो जटायु ने आक्रमण करने का फैसला किया। और अभी तक सीता को पकड़ के रखा था रावण ने, और सीता जटायु से चिल्लाने लग गई कि तुम इस पे आक्रमण मत करो, तुम जाके तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र को बता दो। तो क्योंकि सीता समझ गई थी कि ये रावण, वो अभी सीता भी जो है वो क्षत्रिय की रानी है, वो भी कौन से क्षत्रिय कितनी शक्ति है समझ गए थे, तो वो जटायु भी वृद्ध हो गए थे, तो वो तुम इस युद्ध नहीं कर पाओगे, तुम जाके तुरंत राम को संदेश दे दो कि मेरा इस घृणास्पद व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। जटायु ने सीता की बात सुनी, पर वो सोचने लगे कि जब तक मेरे आंखों के मेरे जीवन में प्राण है, कैसे मेरे आंखों के सामने मैं सीता का अपहरण सहन कर सकता हूँ। तो जो सीता ने उनको निवेदन किया था, बोले मैं तो उसको जरूर पूरा करूंगा, पर उसके अलावा भी मैं उसे रोकने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए जटायु ने रावण पे आक्रमण कर दिया, और अभी रावण के पास अपने शस्त्र थे, और पहले तो उसको लगा ये कौन पंछी है, क्या रोक सकता है, इसे ध्यान नहीं दे रहा था। पर जटायु ने ऐसा भीषण आक्रमण किया, वो उड़ रहा था, उसको आगे से आके अपने दांतों से, अपने पंखों से मारने लगा, उसको अपने जो नाखूनों से मारने लगा, और फिर बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। फिर रावण ने अपना तलवार उठाया और वो उसे मारने लगा, तो जटायु उसके पीछे से आक्रमण करने लगा उस पर, और पीछे से आके उसके बालों को पकड़ लिया, और बालों को पकड़ के उसको घसीटने लगा। अभी रावण अपने हाथ घुमा रहा था पीछे से, पर जटायु तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, और उसको ऐसा घसीटा, पीछे पीछे पकड़ लिया, और फिर उसके जो हाथ थे, हाथ को पकड़ के खींच लिया। तो उसके जटायु की इतनी शक्ति थी कि उसके हाथ ही पूरे खींच के बाहर आ गए, और फिर जटायु ने अपने नाखूनों से उसके सिर को पकड़ लिया, और वो सिर को खींचने लगा, और ऐसी शक्ति थी कि वास्तव में सिर निकल आया, हाथ निकल आया, पर जो ब्रह्मा जी का वर था उससे पुनः हाथ उत्पन्न हो गए और पुनः सिर उत्पन्न हो गए। और रावण बड़ा क्रोधित हो गया था, रावण को पहले लगा था कि यह कोई ऐसा साधारण बन जिसको अभी थोड़ा सा मारूंगा तो चला जाएगा, तो अपने हाथ पैर से मारने लगा, और फिर वो अपने शस्त्र उठाने लगा। तो जटायु बड़ी दक्षता से जो भी आक्रमण हुआ था उसको टाल रहा था, पर जैसे युद्ध चल रहा था, रावण के पास अभी एक कई फायदे थे, कई उसके सुविधाएं थी। एक तो रथ पे था, तो रावण, तो जटायु ने पहले क्या किया, उसके रथ पे आक्रमण करके जो उसके उसके रथ को चलाने वाले घोड़े थे, वो उनको अपने प्रहारों से वध कर दिया, और फिर उसके बाद में उस रथ को भी उध्वस्त कर दिया। और रथ को उध्वस्त, जैसे ही उध्वस्त कर दिया, तो रावण नीचे आ गया, और रावण अभी युद्ध करने, अभी तक उसने सीता को पकड़ के रखा था, सीता को छोड़ दिया उसने, और फिर वो जटायु से युद्ध करने आ गया। और जो राक्षस होते हैं उनमें ऐसी शक्ति होती है उनके योगिक सिद्धियों से, वास्तव में उनको, जिससे कि वो उड़ भी सकता था, तो जटायु हवा में था, वो भी हवा में आके तैरते हुए, उड़ते हुए फिर युद्ध करने लगा। तो इसी बीच सीता वहां से दौड़ के कुछ पेड़ों के पास में जाके रुक गई, और वो सब देख रही थी, और इधर जटायु और रावण में बहुत भीषण युद्ध हो गया। और जैसे युद्ध चल रहा था, तो तभी क्योंकि जटायु वृद्ध था तो उसकी शक्ति कम हो रही थी, और वो पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा था, पर वृद्धावस्था के कारण जो चपलता थी वो थकावट के कारण, वृद्धावस्था के कारण कम हो गई। और जब रावण अपने शस्त्र से प्रहार कर रहा था, तो जटायु बार बार उसको चुका रहा था, पर वो थकावट के कारण जब रावण ने अपना प्रहार किया, तो जटायु के बाद ना पहला एक पंख कट गया, और फिर भी जटायु बड़ा शक्ति से आक्रमण कर रहा था, तो दूसरा भी पंख कट गया, और जैसे दोनों पंख कट गए तो जटायु नीचे गिर गया। जब सीता ने देखा कि जटायु इस तरह से बड़े ही भयानक पर से घायल हो गए, तो तुरंत जटायु के पास में आ गए और जटायु उनके दशरथ महाराज के उनके पिता के समान था, तो उनके सामने आके जो घायल हुए थे वहां पे उन्होंने स्पर्श किया और उसको सब संभालने का प्रयास किया, तो रावण तुरंत आ गया और सीता को खींच लिया और जटायु अभी उसके प्रहार के कारण लगभग बेहोश जैसे हो गया था और उन सीता को खींच लिया और फिर अपनी ही शक्ति से रावण उड़ते हुए वहां से निकल गया। तो अभी जब रावण निकला था तो कैसे होता है कि जो असुर है वो असुरों को भी जो वो जानते हैं कि हमसे ऊंची इस सृष्टि में कुछ शक्तियां हैं, पर वो सोचते हैं कि इनसे बड़ी शक्ति जो है उससे मैं उसको मैं हरा सकता हूं या उससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूं। तो इसीलिए रावण के पास भी हम बाद में देखेंगे रामायण में कि रावण के पास भी अपने राक्षस के लिए ब्राह्मण थे, उनको यतुधन कहा करते थे, और रावण का भी अपना ज्योतिष था, तो उसने ज्योतिषी से पूछा था कि मैं सीता का अपहरण करूंगा तो मैं यशस्वी होगा या नहीं होगा। अभी ज्योतिष शास्त्र का भी उपयोग किस लिए करना है, ऐसी चीजों के लिए करना है, अधार्मिक चीजों के लिए। तो उसको बताया था कि पूरे उसने योजना की थी कि यह तो कार्य कर रहे हो, यह बड़ा अधार्मिक कार्य है, तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसे। तो मैं कर तो रावण इतना उन्मत्त है, मैंने करना है कि नहीं करना ये पूछा नहीं है तुमको, यशस्वी होगा कि नहीं बताओ भाई तुम। तो उसके ज्योतिषी ने बताया कि ये जो काल है वो उसको विंध्य नाम का काल होता है, जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार नक्षत्र होते हैं तो वैसे काल भी होते हैं अलग अलग। तो इस काल में अगर तुम इस काल में कोई व्यक्ति, वो कहते कि उस तुम अपहरण के बारे में नहीं बताएगा, इस काल में अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करता है तो वो उसको संभाल के रख पाएगा, पर उसके बाद के काल में अगर वो प्राप्त करता है तो व्यक्ति चीज उसके पास नहीं रहेगी। तो अभी हम बाह्य रूप से देखेंगे तो जटायु ने अपना युद्ध किया और वो हार गया, और हार गया तो जान भी चली गई और सीता का संरक्षण भी नहीं हुआ। तो इसको हम वास्तव में कई स्तर पर समझ सकते हैं। तो जटायु ने जो उसका युद्ध किया वो लगभग रावण बताया कि काफी समय तक, घंटों तक युद्ध चल रहा था वो लगभग, क्योंकि जब मैं बता रहा था पहले कि लगभग प्रभु श्री रामचंद्र जंगल में गए तो एक घंटे तक वो मरीच के पीछे जा रहे थे और फिर बाद में वे दौड़ते दौड़ते आए, और उसके बाद में जब जटायु और रावण जा रहे थे, रावण तेजी से अपने हवाई अपने रथ में जा रहा था और जटायु उसके साथ साथ जा रहा था, तो दोनों काफी अंतर तक चले गए थे। तो इस अभी तक राम और लक्ष्मण खोज नहीं पाए थे। तो उस ये युद्ध चल रहा था, इस समय में जो वो ज्योतिष के अनुसार जो काल था वो काल खत्म हो गया था। तो यह जटायु भी जानता था, तो जटायु उनको संतुष्टि क्या थी कि जिस काल में वो सीता का अपहरण हुआ है उस काल वो उसके लिए विपरीत है, और उसके कारण जब वो, और यही आश्वासन बाद में जटायु प्रभु रामचंद्र को देते हैं कि आप जरूर सीता को वापस प्राप्त कर लोगे। और इसके अलावा भी तो जो भगवान के हम सेवा में जो भी करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पर इसके अलावा ये भगवान अपने भक्तों का हमेशा संरक्षण कर सकते हैं और करते भी है, पर हमेशा वो शारीरिक स्तर पर संरक्षण करेंगे ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भगवान ने जटायु को क्यों नहीं बचाया, पर भगवान कभी कभी हमें अलग अलग शिक्षाएं देना चाहते हैं। एक शिक्षा यह है कि हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान इस भगवता में कौनते प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों के हमेशा संरक्षण होता है, पर हम ये भगवान ने भगवदगीता में बताया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि रामायण महाभारत के 12वें युद्ध के 12वें दिन में अभिमन्यु का वध हो जाता है, और अभिमन्यु भी अर्जुन का पुत्र है और वो भी कृष्ण भक्त होता है, तो फिर क्या उसका रक्षण नहीं हुआ? तो वास्तव में रामायण महाभारत में व्यासदेव बताते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो सबके कल्याण के लिए ही करते हैं, पर किस तरह से वो कल्याण है किसी का वह हम उस समय समझ पाएंगे ऐसे जरूरी नहीं है। जब हम सब्र रखते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे समझ में आ जाता है हमको। तो बाह्य रूप से भले ही ऐसे लगा हो कि जटायु का पर्यास्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, पर यह केवल एक शारीरिक चेतना पे हम देख रहे हैं, शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, और शारीरिक स्तर पे सबकी मृत्यु होने ही वाली है कभी ना कभी तो भी। तो शारीरिक स्तर पे हम जब देखेंगे तो हम पूर्ण चित्र नहीं देख पाते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर किसी का किसी पे ऑपरेशन कर रहा है तो अगर हम सिर्फ बाह्य रूप से देखें तो डॉक्टर क्या कर रहा है, काट रहा है शरीर को, पर वो काट के जो शरीर के अंदर कुछ जो खराब हुआ है, कुछ जंतु आ गए हैं, कुछ टूट गया है, वो अंदर जो ठीक कर रहा है वो हम बाह्य रूप से देख नहीं सकते हैं। तो शारीरिक स्तर पे जो है वह हम पूर्ण चित्र नहीं देखते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रसंग का अंत क्या होता है कि इसमें इतने सारे सृष्टि के इतिहास में अभी भी इस पृथ्वी पे इतने सारे गीदड़ हैं और सृष्टि के इतिहास में कितने सारे गीदड़ हो चुके हैं, पर अभी जो गीदड़ की जो योनि है वह कोई बहुत ऊंची योनि नहीं है। अगर हम कैसे कहना कि आप गीदड़ जैसा सुंदर हो
किसी को कहेंगे हम तो वो कहेंगे अपमान है ये तो किसी को हम कहेंगे तो वास्तव में
कहीं भी वैदिक संस्कृति में या साधारण संस्कृति में भी गीदड़ का गुणगान नहीं होता है, किसी को गीदड़ से तुलना नहीं होती है, पर फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गीदड़ की योनि में जो जटायु थे उनका क्या हुआ बाद में, उनका उद्धार हो गया, उनकी जटायु को भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए, पर वो सब अशाश्वत है, भगवत धाम की प्राप्ति है वो शाश्वत है। और ये भौतिक जगत जो है यह एक वास्तव में अगर कोई हवाई एयरपोर्ट में जाता है, हवाई अड्डे में जाता है तो वहां पे, या कोई रेलवे स्टेशन पे आता है तो वहां पे वेटिंग एरिया होता है। तभी वेटिंग एरिया का उद्देश्य क्या है कि हमारी ट्रेन आएगी और हमारे ट्रेन आएगी या हमारे प्लेन आएगी और उससे हम हमारे जहां पे जगह में जाना है वहां पे हम जाएंगे। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत ये जो है वास्तव में एक वेटिंग एरिया है, पर इस वेटिंग एरिया में जो हम रह रहे प्रतीक्षा ग्रह में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से पहले ही चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में जाते हैं, सबको जाना ही है। और वो यहाँ से कहाँ जाते हैं ये महत्वपूर्ण है, कब जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है कहाँ जाते हैं ये महत्वपूर्ण है, कब जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर कोई भगवत चेतना में है, भगवान के स्मरण कर रहा है, और तो भले ही युवा अवस्था में हो या वृद्धावस्था में हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, वह भगवत चेतना में है तो वह भगवत धाम ही जा रहा है। और यहाँ पे हम भौतिक स्तर पे अगर देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उस प्रतीक्षा ग्रह को ही देख रहा है और सोचता है कि प्रतीक्षा ग्रह ही पूरा अस्तित्व है और उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो जो भी प्रतीक्षा ग्रह से चला गया मतलब उसका विनाश हो गया ऐसे, पर वास्तव में इससे बड़ा और भी जगत है। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनाय स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान बताते हैं कि भगवद्गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस जगत के परे आध्यात्मिक जगत है और वहां पे कभी भी विनाश नहीं होता है, वहां पे शाश्वत अस्तित्व है। तो जटायु बेहोश हो जाते हैं पर वो सीता माता ने उनको निवेदन किया होता है कि आप मैं कहाँ हूं ये संदेश राम को दिए, तो वह उसका स्मरण करके किसी न किसी तरह से बहुत ही घायल होते हैं, वो जटायु फिर भी वो स्मरण रखते हैं। और रावण सोचता है कि दोनों पंख कट गए हैं तो जरूर उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो इसीलिए वो आक्रमण भी नहीं करता है। जटायु बुद्धिमान होते हैं, अपनी शक्ति से युद्ध करने का प्रयास करते हैं, पर जब देखते हैं कि अब युद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर इस तरह से वो कार्य करते लगते हैं कि रावण को लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, इस तरह से कार्य बिल्कुल हिलना चिलना पूरा बंद कर देता है और फिर रावण चला जाता है वहां से। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र इधर सीता को ढूंढते ढूंढते जब कुटिया में आते हैं, जैसे लक्ष्मण और राम दोनों का भय होता है, वैसे ही वो देखते हैं, जैसे भय कर रहे थे वैसे ही सत्य होता है कि वहां पे सीता नहीं है। और वह जब कुटिया की ओर देखते हैं तो वहां पे वो सीता के पदचिन्हों को देखते हैं और फिर कोई दो बड़े पदचिन्हों को देखते हैं। वह समझ जाते हैं कि कहां पे जरूर कोई संघर्ष हुआ है और कोई सीता का अपहरण कर लिया है। वो पदचिन्हों के मात्रा से ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई राक्षस जरूर आया होगा। और फिर क्योंकि रावण अपने उसने जो रथ रखा था वो पहले अदृश्य रखा था और फिर उसको दृश्य में लाके फिर उसमें जा रहा था, तो क्या है वो कहाँ गए, वो उसके पदचिन्ह नहीं थे, वो उड़ रहे थे हवा में। तो सिर्फ कुटिया के आजू बाजू पदचिन्ह थे पर और कहीं भी पदचिन्ह नहीं थे। तो अभी कहाँ वो सीता, सीता प्रभु श्री रामचंद्र चिल्ला रहे थे और ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो राधा गोकुलानंद भगवान की जय। तो अभी कहाँ ढूंढे, इस तरह से वो ये सोचते सोचते बड़े ही एक तरह से क्रोधित हो गए थे, उदास हो गए थे, भयभीत हो गए थे और सब और दौड़ने लग गए। तो वो अभी जिस दिशा से आए उस दिशा में तो सीता नहीं है, तो दूसरी दिशा में जाने लग गए। और जैसे ही जा रहे थे ढूंढते ढूंढते, तो काफी समय के बाद ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि एक जगह पे वापस कोई संग्राम के लक्षण है। वहां पे जो झाड़ियां थी वहां पे टूट गई थी और खून गिरा हुआ था। और जैसे ही देखा कि उन्होंने वहां पे कि एक एक बड़ा सफेद रंग का कुछ गिरा हुआ है। और प्रभु श्री रामचंद्र ने सोचा कि यही वो असुर है और यही राक्षस है जिसने सीता का न केवल अपहरण कर लिया है पर सीता का ग्रहण कर लिया, उसको खा लिया है। तो यह सोच के प्रभु श्री रामचंद्र इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और वह उस पर ही आक्रमण करने लग गए। और जैसे ही वह आक्रमण कर रहे थे तो उन्होंने सुना राम राम राम। और जैसे ही राम सुना तो आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें अपना तीर नीचे रख दिया और फिर वो आगे पास में गए, देखा कि वास्तव में जटायु ही है। तो तुरंत उन्होंने जटायु को आलिंगन कर लिया और जटायु क्या हो गया बताओ मुझे। तो जटायु पूरा भी मृत्यु की शैया में आ गया था और अब प्रभु श्री रामचंद्र को संदेश देने के लिए ही अपनी जान बचाए रखी थी। और उसने फिर किसी न किसी तरह से जितनी भी शक्ति बची हुई थी उससे बताया कि वो जो कायर और क्रूर रावण है उसने सीता का अपहरण कर लिया है और वह दक्षिण दिशा में गया है और मैंने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया क्योंकि मैं वृद्ध था, इसलिए उसने मुझे घायल करके मृत मान के छोड़ के चला गया है और मैं आपके इंतजार में अभी तक रुका था। और ऐसे उसने फिर बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीता को पुनः जरूर प्राप्त कर लोगे। और इस तरह से संदेश देकर प्रभु श्री रामचंद्र को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने हाथों में उनको पकड़ लिया था, वैसे प्रभु श्री रामचंद्र की गोदी में ही जैसे थे वो। और रामचंद्र का स्मरण करते हुए जटायु ने अपना शरीर त्याग दिया। तो यह जो है शास्त्र में बताया गया कि जिस तरह से भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी मृत्यु हुई, जैसे हरिदास ठाकुर के मृत्यु श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए हुई, वैसे जो जटायु की मृत्यु भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करते हुए उनके ही गोदी में उनके चरण का उनके आलिंगन में हुई, वह बहुत भाग्यवान है। ये जो भाग्य है बहुत ही दुर्लभ है और ऐसा भाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो जटायु को मिला और हम देखते हैं जटायु का भाग्य इतना है कि ऐसा भाग्य दशरथ महाराज को भी नहीं मिला कि दशरथ महाराज भी प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण कर रहे थे पर वे दर्शन नहीं कर पाए जब उनकी मृत्यु हुई। तो और उतना ही नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र ने जो स्वयं दशरथ महाराज का अंत्य संस्कार नहीं किया क्योंकि वो जंगल में थे, पर यहाँ पे जब जटायु ने अपना शरीर त्याग दिया तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि जो दुख का सागर था जो मैं जिसमें मैं प्रभु श्री रामचंद्र जब दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई थी जिसमें मैं डूब गया था वही दुख का सागर आज पुनः मेरे जीवन में आ गया है और जटायु की मृत्यु के कारण मुझे डुबा रहा है। और जैसे जटायु प्रभु श्री रामचंद्र के गोदी में अपना शरीर त्याग देता है का दर्शन करते हुए तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं उसका अंत्य संस्कार करते हैं अपने हाथों से। रुद्राधिप गतिदायक राम गतिदायक उन्होंने परम गति है वो जटायु को प्रदान करते हैं। और इसे वास्तव में यह जीवन का परम यश है, परम यश है यह जीवन का। कि किस भौतिक जगत में कैसे है कि अभी अगर कभी कभी आप देखते हैं जो ओलंपिक्स होते हैं खेलकूद में मैराथन होता है तो कभी कभी मैराथन में क्या होता है एक गोल गोल चक्र में घूमना होता है, उसको लैप कहते हैं इंग्लिश में, कि उसको एक बार गोल घूमो दूसरी बार गोल घूमो तीसरे बार गोल घूमो 10-15-20-30 बार गोल गोल घूमते तो एक बार गोल घूमना शायद वो ऐसे 500 मीटर का होगा। तो अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो लगभग 50 बार उसकी दौर 10 बार या 50 बार गोल गोल घूमना होता है। तो वैसे ही हम इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं तो ये जो गोल जब घूमते कोई स्टेडियम में तो क्या होता है जो उसका शुरुआत होती है शुरुआत से जब अंत तक आ जाता है तो अंत में वापस पुनः नई शुरुआत हो जाती है। तो सर्कल घूमते घूमते जाते हैं तो जो एक स्टार्टिंग लाइन होती है फिर फिनिशिंग लाइन जो होती है अंत की जगत है वहां पे पुनः नया शुरुआत हो जाती है। तो वैसे ही हमें भौतिक जगत में जो है जन्म से शुरुआत होती है फिर घूमते घूमते जाते हैं मृत्यु तक आते हैं पर उसके बाद में तुरंत नई शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से हम घूमते घूमते जाते हैं इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति जो जितने भी चक्कर घूमने हैं वो घूमने के उतना घूमने के पहले ही अगर उसको कोई बोलता है कि अभी आप ये पूरा उत्तीर्ण कर चुके हो और आप अभी अंतिम युति तक पहुंच गए हो और आप ये जो पदवी है या जो पदक है या जो भेंट है जो बख्शीश है वो जीत चुके हो तो फिर वह उसका भाग्य है। तो इस अभी साधारणतः गीदड़ की योनि से मानव की योनि तक आने के बाद फिर आध्यात्मिक प्रगति करके फिर मुक्ति प्राप्त करना यह बहुत लंबा चौड़ा बहुनाम जन्मनाम अंत्य का यह श्रृंखला है। पर उसी एक योनि में बड़े भाग्य के साथ जटायु ने अपनी परम गति प्राप्त कर ली। तो रावण से रावण से भले ही वो एक बाजी हार जाते हैं पर जो माया से युद्ध है भौतिक अस्तित्व में युद्ध है उसको वो जीत जाते हैं। तो इस तरह से वो परम गति प्राप्त कर लेते हैं और फिर श्री रामचंद्र उसके बाद में पुनः वो खोज करने लगते हैं और इससे खोज करते करते वह दक्षिण की ओर जाते हैं। रावण जटायु ने बताया है कि आप दक्षिण की ओर जाओ और जितना दूर जाओगे उतना दक्षिण में जाओगे तो आपको जरूर प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जा रहे होते हैं तो फिर अभी तक जिसने बताया कि रावण के जो सहभागी थे उसमें से उनका विखर दूषण उनका जब वध हो जाता है तो रावण के सारे सहभागी उस इलाके छोड़ के चले जाते हैं और अभी कोई राक्षस रावण के सहभागियों में से नहीं होते हैं। पर दूसरा एक राक्षस होता है कबंध बाहुच्छेदन राम। तो कबंध नाम का एक बड़ा राक्षस होता है तो जो यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र ढूंढ रहे होते हैं तो वह अभी जो वानरों से मिलने के पहले दो प्रधान लीलाएं होती है, एक है कबंध के साथ जो लीला होती है और फिर शबरी दत्त फलाशन राम शबरी के साथ जो लीला होती है। तो कबंध जो प्रभु श्री रामचंद्र दौड़ते दौड़ते जा रहे होते हैं दक्षिण की ओर तो तभी वो अचानक देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल राक्षस है और वो ऐसा अजीब राक्षस है कि उसके जो हाथ है लगभग कई मील तक लंबे जैसे लग रहे हैं और जैसे ही वो उसके हाथ को देखते हैं और वह उसकी इतनी दृष्टि भी इतनी दूर जैसे ही वो दौड़ते दौड़ जाते हैं तो वो उनको देख लेता है और ये लक्ष्मण और राम कुछ करने के पहले ही वो दोनों को पकड़ लेते हैं और भी इतने सारे लंबे हाथ है दोनों को पकड़ लेता है। अभी बहुत समय से मैं भूखा रहा हूँ आज अपने आप ही भोजन मेरे मुँह में आ रहा है से वो उसके आवाज भी होती है बड़ी भयानक आवाज होती है। और फिर जब इस तरह से दोनों को पकड़ लेते हैं और वो दोनों को अपने मुंह की ओर खींच रहा होता है, तभी प्रभु श्री रामचंद्र बड़े हताश हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरे कारण ही अभी सीता का अपहरण हो गया और मेरे कारण ही अभी जटायु का भी वध हो गया, तो मैं बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ, तो अभी मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और मेरे कारण तुम जो लक्ष्मण आए थे लक्ष्मण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो अभी कौशल्या और सुमित्रा कैसे जीवित रहेंगे। तो लक्ष्मण अभी तक वह प्रभु श्री रामचंद्र दुखी हो गए पर लक्ष्मण अभी तक बहुत क्रोधित होते हैं, क्रोधित होते हैं पहले मारीच की चालाकी के कारण और फिर सीता ने जो कहा था वो उसके कारण और फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने उनको डांटा था उसके कारण। तो वो भगवान से कहते राम से कहते हैं कि यह उदास होने का उद्विग्न होने का समय नहीं है, ये राक्षस है इसका हमें वध करना चाहिए। और लक्ष्मण अपनी तलवार को उठा लेते हैं और अपनी पूरी शक्ति से अभी उसको पास में ला रहा है, अभी वो सोचता है राक्षस सोचता है अपनी शक्ति से इतना उन्मत्त होता है ये छोटे से मानव ये क्या करेंगे मुझे, तो वो सोच रहा था अभी मुझे मुंह में आ जाएगा और मैं खा लूंगा। तो कोई कल्पना कर कुछ खा रहा है कोई और अचानक दिखता है कि अरे मैं खाने वाला था हाथी थूक के नीचे गिर गया। तो लक्ष्मण क्या करता है अपनी तलवार उठाता है और तेजी से घुमाता है उस तलवार को और जैसे ही घुमा पूरी शक्ति के साथ क्या होता है वो कबंद का हाथ टूट जाता है। और यह देखकर प्रभु श्री रामचंद्र को भी हौसला आ जाता है और वो भी अपने तलवार उठा के दूसरा हाथ काट देते हैं और वह चीखने लगता है और कौन हो तुम, कौन हो तुम बताओ मुझे। तो फिर इस तरह से जब वो उसका उसको बोलते हैं लक्ष्मण अभी कोई पूछता है तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये मैं लक्ष्मण हूँ और ये दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र है जो अयोध्या के राजा है, तो फिर राजकुमार है। तो फिर जब सुनता है इस तरह से तभी तो वो कहता है कि वास्तव में मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और ये जो होता है यह स्वर्ग लोक का एक गंधर्व होता है और उसको शाप मिला होता है जिसके कारण इस वजह से असुर बन गया होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे आप ही के इंतजार में था और मैं आपका जरूर मदद करूँगा पर पहले आप मुझे जो है इस शाप से मुक्त कीजिए। तो वो देखते उसका दोनों हाथ काट देते हैं फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो फिर वो कहते हैं कि वास्तव में जब मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं आपको मदद करूंगा। तो फिर वह कहते हैं कि मेरी मृत्यु इस तरह से नहीं होगी पर जब आप मुझे इस जमीन में गाड़ दोगे तो फिर उस समय मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। अब प्रभु श्री रामचंद्र वैसे ही लक्ष्मण को कहते हैं दोनों कर देते हैं। जैसे ही वो शरीर से मुक्त हो जाता है तो गंधर्व बन जाता है। वो कहता है कि आप आगे जाओ आप दक्षिण में जाओ और वहां पे आपको सुग्रीव मिलेगा और सुग्रीव जो है वानरों का राजा है और उसके मदद से आप जरूर सीता को पुनः प्राप्त कर लोगे, रावण को हरा कर आप सीता को प्राप्त कर लोगे। और फिर भगवान राम आगे जाते हैं और दिशा से जा रहे हैं तो वहाँ पे जो शबरी है उसका आश्रम होता है। तो शबरी जो होती है यह एक आदिवासी स्त्री के समान होती है और प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति उनकी बड़ी असीम भक्ति होती है और वहाँ पे जो ऋषिगण होते हैं उनकी सेवा में लगी रहती है वो और उसके जो गुरु होते हैं वह उनको आशीर्वाद वह अपनी सारी तपस्या पूरी कर लेते हैं, अपने सारे शिष्य उनके साथ तपस्या करते हैं और वह सब जो तपस्या पूरी करके तपस्या की पूर्ति के कारण वह परलोक चले जाते हैं स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। पर वह कहते हैं शबरी से कि आप मेरे सारे शिष्य आ रहे हैं पर आप मत आओ। कहते हैं कि नहीं मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। इसे नहीं आपकी जो भक्ति है उसके कारण आपको स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करने का मौका मिलेगा और वे जरूर यहाँ पे आएंगे और आपको सेवा करने का मौका देंगे तो आप यहीं पे रहिए। तो जो शबरी होती है वह भगवान के स्मरण में भगवान के सेवा के अपेक्षा के कारण अपना जीवन बनाए रखती है। वहां पे वो अकेले रह रही होती है, पर तभी प्रभु श्री रामचंद्र को आएंगे, तो रामचंद्र जब आएंगे तो मैं कब उनसे मिलूं, कब कैसे उनकी सेवा करोगे, क्या करोगे उनके लिए, इस इंतजार में वो योजना बनाते रहती है। और जो योजना बनाती है तो वो क्या करती है, जंगल में जो फल मिलते हैं बेर आदि फल, वह उनको बना के एक संग्रह करके रखती है। और वह सोचती है कि आज प्रभु श्री रामचंद्र आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, तो इस तरह से वह सालों सालों तक इंतजार करते रहती है। तो अब जैसे वृंदावन बताया गया, गोपियां जो होती है, प्रभु श्री राम भगवान कृष्ण जब चले जाते हैं वृंदावन से, तो गोपियां सालों सालों तक इंतजार करती हैं। फिर बाद में अंत में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जैसे दंतवक्र का वध मथुरा में करने के बाद प्रभु श्री राम कृष्ण वृंदावन आ जाते हैं, और फिर गोपियों के साथ सारे रजवासियों को भगवत धाम ले जाते हैं, पुनर्मिलन होता है, गोपियों का भगवान कृष्ण से विवाह होता है, और फिर वो भगवत धाम लौट जाते हैं। इस तरह से शबरी इंतजार कर रही होती है। तो अगर हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो किसी व्यक्ति का इंतजार करना है, हम एक कोई व्यक्ति अगर 5 मिनट भी लेट आ गया तो हम कहते कितने समय पे नहीं आता है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अगर कोई एक 2 घंटा हो गया तो बोले व्यक्ति छोड़ दो इसका इंतजार करना, 1 दिन 2 दिन, अगर कोई सालों सालों तक इंतजार करना है तो वो कैसे इंतजार कर सकता है, व्यक्ति उदास हो जाएगा। पर शबरी वह कभी उदास नहीं होती है, वह हमेशा उत्सुक रहती है। और कैसे उत्सुक रहती है, क्योंकि भगवान के स्मरण और भगवान की सेवा उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान का अगर सामने भी प्रस्तुत हो गए, पर अगर भगवान को भक्ति में प्रति भक्ति में भाव नहीं है तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण आते हैं और अपना विश्व रूप प्रदान करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता है। पर अगर भगवान का स्मरण है तो फिर उसमें ही दिव्य आनंद है। यद्यपि ये सत्य है कि भक्त जो होता है कि भगवान का स्मरण नहीं करना चाहता है, उसके साथ साथ वह भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा भी करना चाहता है, इसीलिए वह भगवान के दर्शन की हमेशा कामना करता है। पर भगवान के स्मरण में भी इतना आनंद है, सेवा की अपेक्षा में भी इतना आनंद है कि उससे व्यक्ति संतुष्ट रहता है। भागवत के प्रथम स्कंद में बताया गया कि नारद मुनि भगवान का दर्शन एक बार करते हैं अपने पूर्व जन्म में, जब बालक होते हैं, वो बालक नारद होते हैं, और फिर उसके बाद कभी दर्शन नहीं होता है। पर भगवान कहते हैं कि एक बार आपने मेरा दर्शन कर लिया है और मेरे दर्शन करने की आपको और इच्छा है, और इस इच्छा के कारण आप जरूर बहुत मेरे प्रति तृष्णा की प्रस्तुतता में रहोगे, और उस तृष्णा के कारण आपकी सारी भौतिक तृष्णा है वह चली जाएगी। तो उस तरह से शबरी जो है बहुत समय से भगवान का इंतजार कर रही होती है, पर उस इंतजार में मायूसी नहीं होती है, हमेशा प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, क्योंकि भगवान का स्मरण हो रहा है। सुखतरम अपरम न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृते न तुल्यम। कुलशेखर महाराज बताते हैं कुंदमाला सूत्र में कि सुखतरम अपरम न जातु जाने, ऐसा सुख मैं और कोई भी नहीं जानता हूं। कौन सा सुख है वो, हरि चरण स्मरण अमृतेन तुल्यम। भगवान हरि के चरणों का स्मरण जो है वह अमृत है, इसका तुल्य कुछ भी नहीं है। तो भक्त जरूर अपेक्षा करता है भगवान के दर्शन के, पर मांग नहीं करता है। अपेक्षा मतलब हम उत्साह है, हमें इच्छा है, हम जरूर चाहते हैं वो, पर उसकी मांग नहीं करते हैं, उसके उसके बिना भी हम सेवा करने के तैयार रहते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपेक्षा करते थे कि जो प्रचार है यशस्वी हो, बहुत से लोग आए, भक्त बने, मंदिर बने, पर ऐसे नहीं है कि कभी उन्होंने भगवान कृष्ण से मांग के, अगर नहीं करेंगे, अगर लोग नहीं आएंगे तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा, अगर मंदिर नहीं बनेगा तो मैं सेवा करना छोड़ दूंगा, नहीं। भक्त अपेक्षा करते हैं पर मांग नहीं करते हैं। तो इस तरह से शबरी अनेक सालों तक सेवा कर रही होती है, पर ऐसे ही एक दिन वह सेवा के लिए तैयार हो जाती है, बहुत से बेर लाके रखती है, और तभी भगवान राम वहां पे आ जाते हैं स्वयं। तो शबरी की कहानी जो है ये वाल्मीकि रामायण में थोड़ी है, और दूसरे पुराणों में और विस्तारित रूप से है। जब शबरी आती है वहां पे तो वो क्या करती है, जब देखते हैं कि पुरुष राम और लक्ष्मण स्वयं आ गए तो बड़े आदर सत्कार से स्वागत करती है, और जो बेर वो रोज लाके रखती है वह भी पुरुष रामचंद्र को अर्पण करने वाली है। और फिर तो उसके मन में विचार आता है कि पुरुष रामचंद्र को बार बार सेवा करने का मौका तो मुझे मिलने वाला नहीं है, तो जो सेवा करने का मौका है मुझे एक ही बार मिलने वाला है तो उत्कृष्ट रूप से सेवा करनी चाहिए। और अगर उत्कृष्ट रूप से सेवा करनी चाहिए तो अभी मेरे पास तो जंगल में केवल जंगल से फल लाए हुए फल ही है, तो सबसे अच्छे फल जो है मैं भगवान को देना चाहती हूँ। तो अभी अच्छे फल है यह कैसे पता कर सकते हैं हम कभी कभी फल खरीदते हैं दुकान से लाते हैं तो क्या करते हैं, स्पर्श करके देखते हैं कैसे है फल, या कोमल है या कोमल नहीं है, तो उससे हम थोड़ा बहुत स्पर्श करके अंदाजा लगा सकते हैं। आनंद नाम जपों में बताया गया है कि जो प्रसाद है उसको हम चार लक्षणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है प्रसाद को देखने के पहले उसका सुगंध होना चाहिए, कि सुगंध से बड़ा आकर्षण होना चाहिए वो, फिर उसके बाद में दृष्टि से भी बड़ा आकर्षक होना चाहिए वो, फिर उसके बाद में जो स्पर्श के लिए उचित होना चाहिए वो, मतलब अगर वो जो व्यंजन है वस्तु अगर कोमल होना चाहिए तो कोमल होना चाहिए, अगर वह जैसे स्पर्श को जिस तरह से वो आकर्षित करे वैसे ही होनी चाहिए, और बाद में वो जिह्वा के लिए बड़े अच्छे स्वाद होना चाहिए उसका। तो अभी जो फल है अगर हम देखते हैं तो हम उसको खुद पकाते नहीं है, तो फिर वो निसर्ग से ही आते हैं और सोचते हैं कि स्पर्श तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ये फल अच्छा होगा अच्छा नहीं होगा, पर क्या होता है जब हम स्पर्श अगर स्पर्श से हम वो अंदर से फल कैसे समझ नहीं सकते, उसको समझना है तो कभी कभी अगर सड़ गया है तो सुगंध से समझ सकते हैं, पर उसकी जो बिल्कुल किस तरह से फल है वह समझना है तो फिर कैसे समझेंगे। तो शबरी सोचती है कि मैं सबसे अच्छे फल अगर भगवान को देने हैं तो क्या करना चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ मुझे उसका स्वाद कैसे पता होना चाहिए, स्वाद कैसे पता कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो सोचते हैं उसको मुझे ही खाना चाहिए, और कोई वहां पे तो है नहीं, तो फिर वो क्या करती है वो स्वयं वो फल को खाती है, और फिर जो फल अच्छे है स्वाद में वह निकाल के भगवान को अर्पण करती है, और जो फल अच्छे नहीं है उसको बाजू को रख देती है। तो अभी अगर कोई साधारण भक्त इस तरह से करने लगेगा तो फिर यह भगवान के प्रति बड़ा अपराध है कि हम पहले हमारा किसी को झूठा किसी को देना, किसी और को देना ये उचित नहीं है, और भगवान को देना तो पूरी तरह से अनुचित है ये। पर यहाँ पे भगवान जो है भावग्राही है, तो भगवान क्या देखते हैं कि ये शबरी इतनी उत्साह है कि उत्कृष्ट रूप से सेवा करें, और भाव को देखकर वह जो भी फल प्रदान करती है उसको स्वीकार करते हैं। और जब वो देखते हैं कि भगवान राम इतने सारे उनसे फल खा लेते हैं तो उसे पूर्ण देव संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर वो शबरी को आशीर्वाद देते हैं, और शबरी सोचते हैं कि अभी मेरे गुरु के जो इच्छा थी गुरु का आशीर्वाद था जिससे कि मुझे प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन मिला उनको सेवा करने का मौका मिला, तो उससे अपना जीवन कृतज्ञ हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको भी उत्तम गति प्राप्त हो जाती है, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र आगे जाते हैं। और जब आगे जा रहे होते हैं तो अभी दंडकारण्य में तपोवन से दक्षिण की ओर आते आते जो किष्किंड का भाग है वहां पे आ जाते हैं, और जब किष्किंड के भाग में जब आ जाते हैं तो जब इस तरह से काफी समय तक ढूंढते जा रहे हैं, अभी ये सब है ये पूरा जंगल का इलाका है, और वो ढूंढ रहे होते तो एक समय प्रभु श्री रामचंद्र बड़े उद्विग्न हो जाते हैं। और यहाँ पे हम विशेष रूप से भगवान के अलग अलग प्रकार की भावनाओं को देखते हैं, और ये भावनाएं यह भौतिक आसक्ति का लक्षण नहीं है, यह भगवान का दिव्य उनके भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, उनकी भार्या सीता देवी के साथ जो आदान प्रदान है उसका लक्षण है। तो वो उद्विग्न हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस विशाल जंगल में इस विशाल पृथ्वी पे सीता कहाँ होगी, कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं उसको, और ढूंढेंगे तो हम मिलेंगे तो अभी तक सीता जीवित भी होगी या नहीं होगी पता नहीं है। और फिर सीधे परशुराम से सोचते हैं तो वो कहते हैं कि अगर सीता जीवित नहीं होगी, अगर ये राक्षसों ने कुछ किया है सीता को, तो मैं सारे राक्षसों का वध कर दूंगा, ना सारे राक्षसों का वध करूंगा। भगवान अपने धनुष को उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे देवी देवता जो थे वह सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने सीता को रोक, उन्होंने सीता के अपहरण को रोका क्यों नहीं, उन्होंने इस प्रकार के अन्याय को कैसे होने दिया, ये सारे जो देवी देवता है वह सारा ब्रह्मांड जो है उसने इस अन्याय का ये अन्याय को होने दिया है, मैं इस सारे सृष्टि का विनाश कर दूंगा। और भगवान अपने भयंकर तीर जो है उठा लेते हैं, और जैसे ही वो तीर को उठा लेते हैं तो क्रोध अवस्था में तो आसमान में जो है अचानक गड़गड़ाहट होने लगती है और सब जगह अमंगल दिखने लगता है। तो तभी लक्ष्मण जो है वह भगवान के हाथ को पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में आपने ही तो मुझे सिखाया है कि क्रोध के वश में नहीं आना है, और आपने ही जो मुझे सिखाया है वो आज आप कैसे भूल सकते हो कि साधारण व्यक्ति क्रोध के वश में आके कुछ जो अनुचित कार्य करेंगे तो वो भी बराबर नहीं है, पर अगर आप जैसे जो आदर्श व्यक्ति है, जो क्षत्रिय राजा है, वह अगर क्रोध के वश में आके कुछ विनाश कर देगा तो वह तो लोगों के लिए बड़ा ही बुरा उदाहरण हो जाएगा। तो वास्तव में मैं आपको उपदेश देने के लिए पात्र नहीं हूं, तो जो आपने मुझे सिखाया है उसकी मैं आपको स्मृति दिला रहा हूं। तो इस तरह से यह एक ही प्रसंग आता है कि जहां पे पूरे रामायण में लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र को उपदेश देते हैं, तो कई जगह उनमें थोड़ा वाद होता है। जो पहले उनका जो वनवास में जाना होता है तो लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण और राम उनमें बहस जैसे होती है, फिर बाद में जो सीता की अब हम देखे बाद में सीता की अग्नि परीक्षा जब होने वाली होती है तभी भी वैसे बहस होती है, पर यहाँ पे बहस नहीं होती, एक ही जगह जहाँ पे प्रभु रामचंद्र को उपदेश देते हैं। और फिर लक्ष्मण जब अभी तक प्रभु रामचंद्र को देते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि हम सीता को हमारी जितनी भी शक्ति है शक्ति से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, और फिर अगर हम नहीं ढूंढ पाए सीता को तो फिर आप जरूर अपना जो क्रोध है इस सारे ब्रह्मांड पे डाल सकते हैं। तो फिर जब इस तरह से बताते हैं तो फिर प्रभु रामचंद्र शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हमें हौसला नहीं हारना, हम ढूंढते रहते हैं। और इस तरह से जब जा रहे होते हैं तो फिर भगवान राम सीता को पुकार रहे हैं, वो उदास होकर रो रहे हैं और सब जो ढूंढ रहे हैं, तो यह सब जो होता है किष्किन में पहुंच जाते हैं तो सुग्रीव अपने वानरों के साथ किष्किन के पहाड़ में रह रहा होता है, और जब इस तरह से आवाज सुनता है तो तुरंत अपने पहाड़ के ऊपर जाता है, अपनी गुफा में जाता है और वो कहता है कि खतरा आ गया, खतरा आ गया। तो उसके साथ उसके जो वानर होते हैं देखते क्या है, तो वो पहाड़ के ऊपर से जाते हैं और पहाड़ के ऊपर से वहां पे शिखरों से वो सब देखने लगते हैं। तो देखते हैं तो जो वहां पे हनुमान और उसके सारे जो दूसरे वानर होते हैं कुछ ही कहते हैं सुग्रीव से, कहते इसमें भय की क्या बात है, ये तो दो मानव है, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। सुग्रीव कहता है आप ठीक तरह से देखो, ये मानव है, इन्होंने तो मुनि का वेश पहना हुआ है पर वह मुनि दिखते नहीं है शरीर से, क्योंकि उनके शरीर बड़ा शक्तिशाली है और साथ साथ उनके पास शस्त्र भी है। तो इस प्रकार के ये मुझे लगता है कि ये वाली के ही जासूस है, वाली ने भेजा है हमारा वध करने के लिए। तो हनुमान और बाकी सब वानर देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि तुम खामखा भयभीत हो रहे, वास्तव में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुग्रीव हनुमान से निवेदन करते हैं कि आप जाके ढूंढ के आओ, तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है। तो हनुमान जी तुरंत वहां से कूद के नीचे आते हैं और यहाँ पे हनुमान जी के पास भी शक्ति होती है कि जिससे कि वे अपना रूप बदल लेते हैं, और वह रूप बदल के एक बड़े ही मधुर वचनी ब्राह्मण का रूप लेते हैं, और वह आते हैं श्री रामचंद्र लक्ष्मण के पास और कहते हैं कि आप इस प्रकार से इस जंगल में क्यों आए हो और आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो। और वह उनसे इतना सुंदर संभाषण करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र उनके वचनों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जो संभाषण है बड़ा विस्तारित है रामायण में, पर यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि यह व्यक्ति इतना सुंदर बोलता है कि अगर कोई शत्रु अपने शस्त्र को उठा के भी लेके आएगा आक्रमण करने के लिए तो इनके वचनों से शांत हो जाएगा और शस्त्र को बाजू का रख देगा। तो लक्ष्मण फिर जवाब देते हैं, कहते हैं तो जब भी हम देखते हैं कि जब परिचय करना होता है तो जो परिचय करना होता है तो अगर कोई दो व्यक्ति है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति है और दूसरा कनिष्ठ व्यक्ति है, तो जो कनिष्ठ व्यक्ति होता है वो वरिष्ठ व्यक्ति का परिचय कराता है कि मैं ये व्यक्ति ये है, मैं उनका सेवक हूँ या मैं ऐसे हूँ। तो साधारणतः यही शिष्टाचार होता है। तो इसलिए जब वो पूछते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि वो अपना परिचय, वो कहते हैं कि ये प्रभु ये राम है और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो अभी जैसे ही हनुमान जी देखते हैं तो अभी यहाँ पे जो लीला चल रही है उस लीला में भगवान चाहते हैं कि अलग अलग भक्त अलग अलग भूमिका में अलग अलग समय में सहयोग करें। तो इसीलिए अभी तक जो हनुमान है उनका ज्यादा उनका कुछ उल्लेख रामायण में नहीं आया, पर इसके बाद में हम देखते हैं कि हनुमान जी का बहुत ही प्रधान भूमिका हो जाती है। तो जो हनुमान जी जो है, अगर हम उसका पूर्व इतिहास देखेंगे तो जो इंद्र है वह कौन बनता है, वाली बनते हैं। और जो देव जब भगवान विष्णु अवतार ले रहे होते हैं तो देवताओं से कहते हैं कि आप भी अवतार लो और भगवान की लीला में मदद करो। तो तभी जो इंद्र होते हैं वो वाली बनते हैं, सूर्य जो होता है वो सुग्रीव बनते हैं और हनुमान जी जो होते हैं वो वास्तव में शिवजी का रूप होते हैं। और जो शिवजी की जो शक्ति होती है वह शिवजी की शक्ति वायु द्वारा वह जो अंजनी होती है उनके हनुमान जी की माँ उनको प्राप्त होती है। इसीलिए वह हनुमान जी जो है वह शिवजी के रूप अवतार के रूप में है, पर साथ साथ वे वायु के पुत्र के रूप में है। तो शिवजी की शक्ति है और वायु की भी शक्ति हनुमान जी में है। तो वो अभी शिवजी जो है वह प्रभु श्री रामचंद्र के महान भक्त है, वैष्णवानाम यथा शंभो। इसी तरह से हनुमान जी भी रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त है, पर अभी तक वह जब पहले देखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र को उनको लगता है ये व्यक्ति कौन है, पर जब परिचय होता है तो तभी वो हनुमान जी तुरंत प्रणाम करते हैं और कहते हैं तो आप तो मेरे हमेशा के नित्य स्वामी हो और किस तरह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। वह उनको प्रणाम करते हैं और वह अपना परिचय देते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ, आपका भी सेवक हूँ। और इस तरह से जो परिचय कराते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हनुमान जी अब पहले वो सुग्रीव का जो संदेश जो संशय होता है संशय को दूर करते हैं और फिर उनकी संधि जुड़ाने में बड़ा मदद करते हैं और कहते हैं जब वो कहते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हूँ तो प्रभु श्री रामचंद्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो सुग्रीव को ही ढूंढने आए थे। तो फिर वो कहते हैं ठीक है तो जरूर मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। तो कहाँ है सुग्रीव, तो सामने वो पहाड़ दिखाते हैं, इस पहाड़ में ऊपर है, तुरंत हम जाते हैं बोलते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण पहाड़ की ओर जाने लगते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, मैं आपको और लेके जाऊंगा। तो अभी तक ये सब वो हनुमान जी अपने साधारण रूप में हैं, तो कि तुम कैसे लेके जाओगे मुझे। तो फिर हनुमान जी कहते हैं मैं दिखाता हूँ और अपना रूप जो है बड़ा विशाल बना लेते हैं। तो वास्तव में वो अपना विशाल रूप बना लेते हैं और प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो एक कंधे पे राम और एक कंधे पे लक्ष्मण, आपने चित्र देखा होगा कई बार ऐसे चित्र। तो वास्तव में ये दो बार इस तरह से प्रसंग आते हैं कि वो दोनों लक्ष्मण और राम को उठा के ले जाते हैं। हम रामायण के युद्ध में देखते हैं कि अंतिम युद्ध के समय में और उसके कुछ समय पहले भी जब प्रभु श्री रामचंद्र को युद्ध करना होता है तो हनुमान जी उनके रथ के समान बनते हैं और वो हनुमान जी के सिर पे सवार होकर युद्ध करते हैं। जब रावण जब युद्ध करने आता है अपने रथ पे तो तभी हनुमान जी उनका रथ बनते हैं। पर एक ही समय में एक कंधे पे राम और एक कंधे पे लक्ष्मण, ये दो समय होता है, ये पहला मौका होता है, और दूसरा मौका जब होता है जो महीरावण नाम का एक रावण का भाई होता है, और वह जब महीपुरी में उनका अपहरण करके ले जाता है दोनों राम और लक्ष्मण को, तो उनको जब वापस लेके आते हैं महीपुरी से, तभी पुरुष राम और लक्ष्मण के कंधे पे बैठ के आते होते हैं। तो जब इस तरह से लेके जाता है तो अभी हनुमान जी तो वायु पुत्र है और वो वायु के समान उड़ते जा सकते हैं, पर वो सोचते हैं कि ये परशुराम को मेरे कंधे पे रख के उनके चरण कमलों का स्पर्श करने का मौका मुझे बार बार मिलेगा नहीं पता नहीं, तो धीरे 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 जाते हैं और परशुराम चंद्र का वो दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं और उठा के फिर वो सुग्रीव के पास जाते हैं। और सुग्रीव जब देखता है कि इस तरह से हनुमान जी बड़े आदर से उनको लेके आ रहे हैं, तो उनका संशय जो है चला जाता है और वो कहता है कि उनको जब सामने लेके आते तो वह देखता है कि राम बड़ा ही तेजस्वी व्यक्ति है, तो राम के लिए एक आसन तैयार करता है और स्वयं एक आसन पर पेड़ का ही आसन होता है वो, और फिर उसे बिठा देता है और फिर वह खुद बैठ जाता है। फिर हनुमान जी उन दोनों का परिचय कराते हैं और वह अभी राम के लिए आसन बनाता है, पर यह देखकर राम जब बैठ जाते हैं तो तुरंत हनुमान जी जो है लक्ष्मण के लिए आसन लेके आते हैं, लक्ष्मण बैठ जाते हैं और फिर वो परिचय होता है उनका। और फिर प्रभु रामचंद्र बताते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे सीता की खोज में आया हूँ, और जब इस तरह से बताते हैं वो तो सुग्रीव बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे था तो मैंने कुछ समय पहले देखा कि एक सुंदर स्त्री को एक राक्षस लेके जा रहा है, और जब उसने देखा कि इस तरह से वो हम नीचे है तो उसने हवा जा रहा था, वह हवा के मार्ग से, तो उसने कुछ चीजें नीचे फेंक दी थी। तो परशुराम जी कहते हैं क्या आप मैं दिखा सकते हैं, तो सुग्रीव तुरंत अपनी गुफा में जाते हैं और अंदर से वो लेके आते हैं, और वो जो वो वस्त्र होते वो जो आभूषण होते हैं वो जब देखते हैं तो फिर परशुराम रामचंद्र उसको पकड़ लेते हैं, अपने सीने पे लगाते हैं, और ये तो सीता के ही आभूषण है और सीता इसी दिशा में गई है। तुरंत वो सुग्रीव से पूछते हैं वो कहाँ गई वो सीता, क्या आप जानते हैं? तो वो कहाँ गई मुझे पता तो नहीं है, पर दक्षिण दिशा में गई इतने पता है, और अगर मेरे वानरों की सेना मेरे साथ में होती तो मैं सारे वानरों की सेना को तुरंत भेज देता था और मैं उन सबको सीता को कहाँ है पता करवाता। तो जब प्रभु श्री राम जी सुनते हैं तो कहते हैं मुझे तो बताया गया था कि आप वानरों के राजा हो। बोलते हैं कि नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, वानरों का वाली वानरों का राजा है और मैं उसके भय के कारण यहाँ पर रह रहा हूँ। जब सुनते हैं तो आश्चर्य की तरह वो कहते हैं कि वाली तो तुम वानर हो, वानर है तो तुम उनके भय में क्यों रहते हो? और पूरी कहानी बताते हैं, आप सब कहानी जानते हैं संक्षिप्त रूप में, वो दोनों का दोनों के में कुछ मतभेद हो गया होता है, गलत फहमी हो जाती है और उसके कारण वह इस तरह से इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि युद्ध, उसके बारे में हम चर्चा भविष्य में करेंगे। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी की योजना से क्या होता है, अभी राम और सुग्रीव ये संधि बना लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर संधि बना ली है तो हम क्या करेंगे, साथ में सहयोग करेंगे, और वे तुरंत यज्ञ की अग्नि जलाते हैं, यज्ञ की अग्नि जला के फिर उसमें उसके परिक्रमा करते हैं और हाथ जोड़ के हाथ साथ में रख के परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि मैं तुम्हें राज्य प्राप्त करने में मदद करूंगा, और फिर सुग्रीव कहते हैं कि इसके बाद में मैं आपको जो आपके लिए सीता का ढूंढने का मदद करूंगा आपको। तो इस तरह से जब दोनों योजना बना लेते हैं तो यह जो शक्ति है, हम साधारण कभी दो मित्र मिल जाते हैं तो हैंडशेक कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं उसे, तो उसमें वो एक स्नेह का लक्षण है। पर जब कोई दिव्य कोई धार्मिक स्तर पे कुछ संधि होती है तो उसमें एक ऊंची शक्ति भी आ जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि जब इस तरह से वो संधि कर लेते हैं तो वाली, सुग्रीव और सीता इन सबके शरीर में एक प्रकार का विकार होने लगता है, जो उनका जो बाएं हाथ है वो हिल लगता है अपने आप, जो बाएं आंख है वो बंद होने लगते हैं, खुलने लगती है। तो कैसे होता है कि इस ऐसे बताया गया है कि जो शकुन होते हैं यह एक विज्ञान के समान है कि इस ब्रह्मांड सृष्टि में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, उसको जानना हम सबके लिए संभव नहीं है, पर उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे वैज्ञानिक बताते हैं कि जो चींटियां होती है वह समझ जाती है कि भूकंप कब होने वाला है, इसीलिए लगभग एक दिन पहले वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे अभी भूकंप होने वाला है, यहाँ से हमें दूर जाना चाहिए। तो फिर ये वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाला। तो उसी तरह से शकुन जो होते हैं वो दिखाते हैं हमें कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो चार तीन प्रकार के शकुन होते हैं, वो एक होते हैं कि जो हमारे शरीर में शकुन होते हैं, दूसरे होते हैं कि हमारे आजू बाजू के वातावरण में शकुन होते हैं, और तीसरे आसमान में शकुन होते हैं। तो शारीरिक शकुन भी उनमें से क्या है कि शरीर के हाथ को हिलना। तो हम शारीरिक स्तर पे देखते हैं कि वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर आपका अगर कुछ हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ कांप रहा है, तो फिर क्या यह लक्षण हो सकता है कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक होने वाला है। ये बहुत सिंपल साधारण स्तर पर बता रहा हूँ, इसका और विशेषता है और कुछ हो सकता है, पर यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि जो ये एक विज्ञान है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा हाथ हिल रहा है उसे हार्ट अटैक क्यों होगा, हाथ का और हार्ट का क्या संबंध है, हाथ का और हृदय का संबंध क्या है, पर वो संबंध समझने के लिए विज्ञान होता है। तो शकुन जो होता है ये लक्षण होता है। तो शारीरिक स्तर पर जो होते हैं और ये शकुन भी जो होते हैं, अपशकुन हो सकते हैं, अपशकुन नहीं भी हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं जो लक्षण, वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो अगर पुरुष के शरीर का जो दाया हाथ अगर कांपता है तो वो पुरुष के लिए अमंगल है, पर स्त्री के लिए अगर दाया हाथ कांपता है तो वो मंगल है। तो इसीलिए रावण और वाली का जो दाया हाथ कांपता है तो क्या है, उनके लिए अमंगल है वो, पर सीता के लिए जो होना वो मंगल है। और इस तरह से जो संधि हो जाती है तो उससे दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके पहले जब संधि करने के पहले ही सुग्रीव थोड़े संशय में होते हैं कि वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र वो सही में वाली को हरा पाएंगे कि नहीं। तो वो उसको किस तरह से वो संशय को वो निवारण करते हैं और किस तरह से वाली का उद्धार होता है, उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। यहीं पे हम आज के प्रश्न को विराम दें। किसी कोई सवाल है? यस। तो जैसे भागवत शुद्ध भागवतम जो है शुद्ध भक्ति का स्तर बताता है, महाभारत धर्मार्थ काम मोक्ष का स्तर बताता है, तो रामायण किस स्तर पे आता है? वास्तव में ऐसे नहीं है कि महाभारत केवल धर्मार्थ काम मोक्ष का स्तर बताता है। तो हम साथ बहुत उसमें भी शुद्ध भक्ति का के बारे में बताया गया, जैसे भीष्म पितामह की भक्ति है, वो कैसे भगवान के दर्शन करते हुए उनका शरीर त्यागते हैं, वह शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताया गया है। पर अधिकांश रूप से जो है धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में है। तो रामायण भी अधिकांश रूप से जो है वह अगर हम प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन को देखते हैं तो वह धर्मार्थ काम मोक्ष के स्तर पे है। हम देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जो है वह अलग अलग और यज्ञ करते हैं, वह कहीं बताया गया कि शिव जी की पूजा कर लेते हैं और वो यज्ञ कर वो अलग अलग प्रकार से धार्मिक कार्य करते हैं। जैसे कि वहाँ पे वो अपने पिता के आदेश का पालन करने का बहुत जोर देते हैं कि दशरथ महाराज के वचन को सत्य रखना है। तो यह सब जो धार्मिक है पर यह सर्वोच्च धर्म नहीं है। तो अगर हम प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन को ही देखते हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तो फिर वो धर्मार्थ काम मोक्ष का ही स्तर है। पर जब हम समझते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं भगवान है, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान है, और उस दृष्टि से हम उनके सब लीलाओं को देखते हैं, तो फिर जो भी उनके सहयोगी है वह शुद्ध भक्त है और वह जो भी कर रहे हैं वो भक्ति के स्तर पर होता है। तो इसीलिए ये रामायण और महाभारत में फर्क यह है कि महाभारत में कृष्ण केंद्र नहीं है, महाभारत में पांडव केंद्र है और कृष्ण जो है वह पांडवों के सहयोगी है। पर रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र ही केंद्र है। तो अगर हम रामलीला से जो राम कथा है उसमें प्रभु श्री रामचंद्र क्या कार्य करते हैं उसको देखेंगे और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो अधिकांश रूप से वो धर्मार्थ काम मोक्ष के स्तर पे है। और उसके उसके कारण ही जब वानरों जब सारा युद्ध खत्म हो जाता है तो सारे इंद्र वगैरह देवता आते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं इंद्र से वो वर मांगते हैं कि आप मुझे वर दो कि सारे वानर जहां भी रहेंगे वो बड़ी समृद्धि में रहेंगे। और वो कहते हैं कि अगर कोई वानर की मृत्यु हो गई है तो उनको भी आप पुनः जीवित कर दो। तो देवताओं से वर मांगने की जरूरत क्यों नहीं है, पर क्यों दिखाया, क्योंकि वो धर्म वो उस स्तर पर दिखाते हैं कि वे मानव है और देवता उनसे ऊंचे हैं। पर जब हम आचार्यों की तात्पर्य के आधार पर देखते हैं और सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान राम के कार्य को नहीं देखते हैं पर हम उनके स्तर को समझते हैं तो फिर उन कार्यों पर चिंतन करना और उन कार्य का विश्लेषण करना वह भक्ति के स्तर पर है। तो मतलब ये रामायण को हम दो स्तर पर समझ सकते हैं कि सिर्फ अगर वो कार्य को देख रहे हैं उन्होंने इस समय ऐसे कार्य किया उन्होंने इस समय ऐसे कार्य किया ऐसे क्यों किया तो वो अधिकांश रूप से धर्मार्थ काम मोक्ष पे के स्तर पे है। पर जब हम समझते हैं कि वे स्वयं भगवान है उनका स्मरण करते हैं तो कीर्तन करते हैं उस भाव से तो फिर वो शुद्ध भक्ति है। स्पष्ट है इस कई बार ऐसे होता है कि अलग अलग ऋषि अलग अलग धामों में अलग अलग लोकों में जाते हैं पर भगवत धाम में नहीं जाते हैं, ऐसे क्यों है? तो वास्तव में अपने अपने स्तरों के अनुसार उनको प्राप्ति होती है कि ऐसे नहीं जैसे नहीं कि जो हर एक ऋषि जंगल में रह रहा है वह शुद्ध भक्त ही है। उसकी उनकी चेतना ऐसे हो सकती है कि उन्हें इस भौतिक जगत के या मृत्यु लोक के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है या स्वर्गलोक प्राप्त करना है तपलोक प्राप्त करना है तो जो व्यक्ति की चेतना है उसके अनुसार उनको प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि जो सब ऋषिगण है वह शुद्ध भक्त है, जैसे बताया था कि सब ब्राह्मण जो है वह ऐसे नहीं है कि वह भक्त है। कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के खिलाफ भी यज्ञ करते हैं जैसे अर्जुन करते हैं। तो उस जंगल में ही रहना या ऋषि होना यह भक्त होना एक नहीं है, भक्त जो है वह दुर्लभ होते हैं। तो जिनमें भगवान के भक्ति की चेतना है उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो कलयुग में कैसे है कि अगर आपको ब्रह्मांड को तुलना करनी है तो ऐसे है कि ये मृत्यु लोक है नीचे के लोक है स्वर्ग लोक है और उसके परे भगवत धाम है। तो कलयुग में स्वर्ग में जाने वाले लोग लगभग है ही नहीं क्योंकि स्वर्ग को जाने के लिए इतना पुण्य करना है वह कोई कर ही नहीं रहा आजकल। वो अपने किसी व्यक्ति के नाम के मृत्यु हो जाए नाम में लिख सकते स्वर्गवासी या कैलाशवासी लिख सकते हैं वो, पर सिर्फ वो लिखने से व्यक्ति स्वर्गवासी कैलाशवासी नहीं बनता है, वो वास्तव में उसको भक्ति करनी चाहिए। तो पर कलयुग में अधिकांश लोग नरक में जा रहे हैं या कुछ भक्त करके भगवत धाम जा रहे हैं, पर पूर्व युग में पुण्य के अनुसार अलग अलग पात्रता के अनुसार अलग धाम में लोग जा सकते हैं। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। Thank you.